ओम शांति।
आज अनुभव सुनाने के लिए कहा है, मुझे जब से कहा मैंने याद करने की कोशिश की, कई चीजों को थोड़ी याद आई, अब याद आ जाएगी बहुत बातें। यहां बैठते ही मुझे दो बातें याद आई जो मेरे लिए अपनी बहुत नशे की बात रही है कि जिन पर भगवान राजी हो जाए उनके लिए जीवन की यात्रा बिल्कुल सरल हो जाती है। तो मुझे पहले दिन से समर्पित होने से ही ऐसा आभास होने लगा था कि बाबा मुझ पर बहुत राजी है। तो ये बात मुझे अभी याद आई, गीत की कुछ लाइन थी शायद ऐसी, तो मुझे याद आया फिर कि बाबा राजी क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। आप जानते हैं अनुभवों में कुछ बातें सुनाई जाती हैं, कुछ नहीं सुनाई जाती हैं, फिर भी मैं वो सब बातें जिनसे आप सबको कुछ फायदा हो आपके सामने रख देता हूं। मुझे इस जीवन में बचपन से ही बहुत छोटी आयु से धर्म के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण था, और उसमें भी पूजा पाठ में नहीं, अध्ययन में, स्टडी में, ये जानने की इच्छा थी भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इसके बारे में कुछ विचार नहीं होते थे। भगवान कौन है, उसे कैसे मिला जा सकता है, ये संसार क्या है, विशेष रूप से संसार और भाग्य, इन सब के बारे में जानने की इच्छा होती थी। तो छोटी आयु से ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थी। हमारे उधर बहुत पुस्तकें मिलती हैं धर्म की छोटी, तो उनसे और रुचि बढ़ती गई। ये तो कुछ समझ में नहीं आता था कि ये गलत है ये सही है, जो पढ़ते थे वो अच्छा लगता था, और परिवारों पर आर्य समाज का प्रभाव था तो उनका सारा साहित्य बहुत जल्दी पढ़ लिया हमने और सब कुछ समझ में आ गया। ये सब कुछ पढ़ने के बाद गीता पढ़ी बहुत छोटी आयु में, उपनिषद पढ़े और दर्शन, रामायण महाभारत तो घरों में होती थी, तो योग की ओर झुकाव होता था, योग शब्द आकर्षित करता था, और हमारे उधर सन्यासी बहुत आते थे तो सन्यासियों की ओर आकर्षण होता था। कहीं से भी किससे बात करने का मौका मिल जाए तो बात करते थे, कुछ पता नहीं था। तो उसी समय हमारे एक अंकिल दिल्ली में ज्ञान में चलते थे 62 से, तो वो हमारे घर आते थे, तो किताबें तो अपने पास बहुत थोड़ी होती थी, बहुत थोड़ी थोड़ी माना ना के बराबर, 8-10 पेज की छोटी किताबें निकलती थी। तो एक किताब निकली थी तो वो हमारे घर छोड़ के आए, वो एक दिन मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसको पढ़ा। योग के बारे में उसमें वर्णन था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, ममा क्या है, विजयमाला क्या है और योग क्या है। उस समय आपको क्या बताएं तो भगवान शिव बाबा का स्वरूप ज्योतिबिंदु नहीं दिखाया गया था हमारे यहाँ, अंगूठाकार, तो एक बड़ा सा अंगूठे जैसा बनाते थे लाइट निकलती हुई, ये भगवान का स्वरूप है। तो मुझे ये बात पढ़ते ही एक बहुत सुंदर बात ने मन में प्रवेश कर लिया, एक उपनिषद पूरा भगवान की सर्वव्यापकता पर था। तो जैसे इसमें मैंने पढ़ा कि भगवान अंगूठाकार है, उनमें भी कहीं कहीं ऐसी चर्चा थी कि वो ज्योति स्वरूप है, तो तुरंत मेरी बुद्धि तेजी से काम कर गई छोटी आयु में कि जब उसका रूप है तो वो सब जगह नहीं हो सकता, सर्वव्यापी नहीं हो सकता वो। मुझे पता नहीं था ये किताब ब्रह्मा कुमारियों की है, ब्रह्मा कुमारियां कोई और हैं और ये शास्त्रों का ज्ञान कुछ और है, सब एक ही है। तो इस बात ने मुझे आकर्षित किया और उस किताब में योग के बारे में जो विधि लिखी थी उस विधि के अनुसार मैंने योग अभ्यास किया। ये बात 64 की है। योग अभ्यास जो किया तो योग अभ्यास करते ही पहले ही क्षण ये अनुभव हो गया कि जैसे मेरा मिलन भगवान से हो गया हो। बस शुरू हो गया। मैंने वहां अपने अंकिल को लिखा, मुझे और किताबें भेज दो। तब छोटी किताबें जो और थी वो उन्होंने 3-4 भेज दी। तब की किताबें हमारी जरा क्रांतिकारी होती थी, आज जैसी नहीं। क्या क्रांतिकारी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, पहली किताब उन्होंने वो भेजी। दूसरी थी गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, दूसरी वो। एक तीसरी किताब थी सच्ची गीता, जिसमें बहुत झगड़ा हुआ था, शंकराचार्यों ने सन्यासियों ने हंगामा किया था कि हमारी गीता झूठी है क्या, जो आपने सच्ची गीता नाम दिया है। बहुत सुंदर ढंग से वो लिखी गई थी, सारा ज्ञान था उसमें। प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती थी, 2-3 कलर में, हरा लाल ब्लैक, इन कलर में सुंदर प्रिंटिंग और चित्र। तो हमें बहुत आकर्षित किया उसने। फिर स्टडी की और योग अभ्यास होता रहा पढ़ते पढ़ते। और 68 में हम बाबा से मिलने आए जून में, तो बाबा को देखा तो देखते ही ऐसा लगा कि बाबा को तो हमने उधर भी कहीं देखा है अपने वहां। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बाद में के हो ना हो, हमें बाबा के कुछ साक्षात्कार जैसे हुए हो। मुझे ख्याल आता था हमने अपने शहर में फलानी जगह बाबा को देखा है, ऐसी फीलिंग होती थी। तो बाबा में तो आप समझते ही हैं हम सब, शिव बाबा जब आते थे तो बाबा का जो स्वरूप था वो बहुत ही पावरफुल चमत्कारी होता था। अब गुलजार आदि के तन में आते हैं वो दूसरा स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे ठीक सवेरे 6:15 बजे, तो बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा प्रभाव बाबा के चेहरे पर होता था। वो हम सबको बहुत आकर्षित करता था। हमारी आयु हालांकि 18-19 साल ही थी, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग। 7-8 दिन हम यहाँ रहे, हम लेकर गए और हमने बाबा को कहा कि हम समर्पित होना चाहते हैं। बाबा बहुत समय देते थे सबको, जल्दीबाजी कुछ नहीं होती थी, क्योंकि आने वाले लोग 50-60 से ज्यादा नहीं होते थे कभी भी। तो बहुत हरेक को पूरा समय देते थे, उनकी सब बातें सुनते थे, जैसे बाप और बच्चे हों ऐसा मिलन होता था दोनों का। कई कई बार, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोग बाबा से पर्सनली, वो भी पर्सनली एक एक को बुलाते थे बाबा, और सब कुछ पूछते थे। बहुत अच्छी दृष्टि मिलती थी। तो बाबा ने तो कहा छोटा है, देखकर कहा नहीं अभी तुम पढ़ो, बाबा की सेवा करो, और हमें भेज दिया वापस। लेकिन बस बाबा को देखने के बाद फिर संसार में हमारा मन नहीं लगा, वो संभव नहीं था। फिर हमें लगता था कि ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस संसार के लिए पैदा नहीं हुए हो, चलो वहीं जहां बाबा है। मन में बहुत उमंगे उठती थी बाबा के साथ ही रहेंगे। तो मैं बाबा को बहुत पत्र लिखता था और बाबा के उत्तर आते थे, छोटे छोटे उत्तर हुआ करते थे बाबा के, 1-2 लाइन के बस, इससे ज्यादा नहीं। कि बच्चे का पत्र मिला, बाबा को ख्याल में है, बच्चे को याद प्यार देना, बस ज्यादा इतना लिखेंगे बाबा। तो लौट गए हम, लेकिन फिर दिल्ली में पहुंचे। तो दिल्ली में 6 मास लगभग हमने बहुत प्रयास किया समर्पित होने का। प्रयास में बाबा को लिखना और बहुत योग करना। जिसको कहने का मौका होता था तो कह देते थे, लेकिन लोग डराते बहुत थे समर्पणता के नाम से, क्योंकि अब जो यज्ञ का स्वरूप है वो तब नहीं था। जिसको हमने कहा, 1-2 को कहा, तो कहा अरे समर्पित होके वहां जाओगे बहुत परेशान हो जाओगे तुम, तो मुश्किल हो जाएगी। हम डर गए, हमने किसी को भी कहना छोड़ दिया। बाबा ने दिसंबर में दीदी को भेजा था, मेला था इलाहाबाद कुंभ का, दीदी हमसे मिली और शांता मेन दादी हमारी टीचर थी रजौरी में। तो हमने दीदी को कहा कि हम समर्पित होना चाहते, हमने सोचा दीदी आई है मधुबन से, दीदी को कहना चाहिए। बस जल्दी ही दीदी ने 3रे दिन इधर से बाबा से पूछ लिया फोन करके, और हमें कहा ठीक है समर्पित हो गए हम। बस इतनी सी घटना हुई, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। और फिर हम यहाँ आ गए, बाबा व्यक्त हो गए, ये सब घटना साथ साथ हुई। उसके बाद हमें बहुत सारी चीजों का पता चला। पहली मुरली जो बाबा की चली थी 21 जनवरी 69 अव्यक्त मुरली पहली, उसकी मुरली से एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा हमें मिल गई। बाबा के अव्यक्त होते ही बहुत वैराग हो गया था यज्ञ में, बहुत ज्यादा वैराग। जाने वाले चले गए थे, 10,000 भाई बहने थे सारे सेंटरों में, 5,000 रह गए, 5,000 पलायन कर गए। जो यहाँ रहे, यज्ञ से तो कोई नहीं गया अंदर से, लेकिन वैराग की भावना बहुत हुई, एकदम वैराग। और आबू जो था वो जंगल जैसा ही था, बस एक छोटा सा गांव, जो ये सड़कें और डेकोरेशन, बिजलियां और बहुत आजकल सुंदरता दिखती आबू में, ये सब नहीं थी, एक गांव। आप समझ सकते हैं, सारे दिन में नीचे से 3 बस आया करती थी, ऊपर बस 2-4 टैक्सी थी कोई जो चलती रहती थी। टूरिस्ट प्लेस ये नहीं था, बिल्कुल एकांत शांत। और भालू आ जाते थे मधुबन के गेट तक कई बार। ओम शांति भवन तो था ही नहीं तब, छोटा सा पांडव भवन था। हमारी चारों ओर की दीवारें भी बड़ी बड़ी नहीं थी, 2-2 फुट की दीवारें थी, बस खुला ही खुला था। तो बाबा की पहली मुरली से हमने एक बात सुनी कि जो बच्चे बाप के समीप थे उन्होंने महसूस किया होगा कि पिछले 8 मास से बाबा निरंतर योग में रहते थे। तो हमारी एक बात समझ में आई कि निरंतर योग में रहना ही संपूर्ण बनना है। मुरलियां तो सुनते ही हैं, रोज यही बातें आती हैं। तो हमने अपने से एक संकल्प किया कि अगली 18 जनवरी तक हम भी संपूर्ण बनेंगे। बहुत उमंग, योग बहुत ज्यादा नहीं लगता था, योग का चार्ट ऊपर नीचे बहुत होता था, पावरफुल योग नहीं था। मेहनत बहुत की थी दिल्ली में भी, 68 के 6 मास आखिरी यहां से मिलने के बाद, और उसके बाद भी मेहनत बहुत की थी, लेकिन योग में संपूर्ण सफलता नहीं थी। तो हम बहुत सारी ड्यूटी यज्ञ में होती थी, पहले एक ही ड्यूटी एक के पास नहीं होती थी, बहुत सारे काम हमें करने होते थे। 2 घंटे धोबी घाट में जाना है तो टोली वाली माता एक होती थी, उसके साथ काम करना है। एकोमोडेशन में भी मैं ही था, मुझे उसमें काम करना है। और भी जहां तहां छोटी मोटी ड्यूटी, क्योंकि मैं ही लास्ट आया था समर्पित होके, मेरे से पहले 10 थे, तो जिसको जो काम मिले मुझे ही कहते थे, क्योंकि जो नया होता उस पे ज्यादा अधिकार रहता है ना। तो मैं इस तरह से काम मैं बहुत करता था, मेरे शरीर में बहुत ताकत थी और मन में भी, काम जितना चाहे मेरे से करा लो, ना मुझे थकान होती थी ना कुछ और। तो मेरी ड्यूटी फिर लगा दी गई म्यूजियम में, म्यूजियम बन रहा था तब। निर्वैर भाई बॉम्बे से आए, वो बॉम्बे में रहते थे, और म्यूजियम बन रहा था, उसमें जो स्वर्ग बना रहा था उस आर्टिस्ट के साथ मेरी ड्यूटी भी लगा दी। मैं भी कुछ पेंटिंग करना जानता था। अब यहां से मेरे जीवन की दिव्यता प्रारंभ हुई और मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा भाग्य जुड़ा हुआ है। पहली घटना हुई, अव्यक्त बाबा इस म्यूजियम की ओपनिंग करने के लिए म्यूजियम में आए, जो पहला हॉल है ना उसमें बाबा आए। और बाबा ऐसे ही रूढ़ियान कर रहे थे सबसे, सभी भाई बहने आए हुए थे बड़े बड़े, क्योंकि उस टाइम म्यूजियम बनना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो सभी दादियां, सभी बड़े बड़े भाई वहां उपस्थित थे, तो पूछ रहे थे कि बाबा आपने कहा था कि हम साथ ले चलेंगे, आप पहले चले गए हमें छोड़ गए। उन दिनों ये रूढ़ियान बाबा से बहुत होती थी। तो बाबा ने रूढ़ियान में ऐसे ही कहा कि अच्छा बाबा, अगर तुम्हें ले चले तो 8 घंटे योग का चार्ट है। तो सब चुप, 8 घंटे में तो सब चुप हो जाते हैं, भाइयों की तरफ देगा, बहनों की तरफ देगा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, बाबा की मुरली अब ऑफिशियल हो गई। बाबा ने कहा कि जिसका बीज रूप रूरिहान, विचार मथन और सर्विस में बुद्धि चलने का समय मिलाकर 8 घंटे होता हो, वो हाथ उठाओ। तो बहनों की ओर देखा, कोई नहीं। फिर भाइयों की ओर देखा तो 4 ने हाथ उठाया, उसमें मैं भी एक था, जगदीश भाई थे, गोपाल भाई थे जो नीचे रहते, वो पार्टी में आए थे, और एक कोई और नया भाई। तो बाबा ने हम चारों को बहुत ही पावरफुल दृष्टि दी, और मैं तो बिल्कुल आगे बैठा था, हॉल भी छोटा सा, इससे कितना छोटा होगा, 1/3। और बस उस दृष्टि ने ओपन कर दिया सारा भाग्य, खोल दिया। उसके बाद और किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और बाबा ने कहा, एक महावाक्य उच्चारण कर दिया कि जिन्होंने हाथ उठाया है बाबा उनका एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे। हमारे लिए ये महावाक्य वरदान बन गया। और हमने प्रतिज्ञा की, मैं और भोपाल भाई पहले से ही दोस्त थे, क्योंकि वो भी उधर का ही रहने वाला, जहां के हम लौकिक में, वो भी आता था यहाँ, हम भी, तो हम दोनों ने रेस की कि आज कौन ज्यादा योग अभ्यास करेगा। और अगले दिन प्रतिज्ञा की दोनों ने कि आज हम शाम तक अपना योग का चार 6 घंटे करेंगे, और अगर न हुआ तो रात का भोजन छोड़ेंगे और रात को जागकर पूरा करके ही सोएंगे। और हमारा हो गया, हमें बहुत खुशी हुई जीवन में। पहली बार 6 घंटे योग किया हमने, मौन भी रखा पूरा, हर घंटे का चार्ट लिखा, हमारा उमंग बढ़ा। वो बाबा का वरदान और दृष्टि काम कर रही थी यहाँ। ये हमें स्पष्ट फीलिंग थी कि ये हमारा हमारे बस की बात नहीं है। दूसरे दिन 7 घंटे की प्रतिज्ञा की, हो गया। तीसरे दिन 8 की, हो गया। जीवन में पहली बार जब 8 घंटे योग हुआ, तो आप समझते हैं उसका आनंद बहुत ज्यादा होता है। और वो योग हमारा साधारण योग नहीं था, क्योंकि तब हमारे पास योग की भिन्न भिन्न तरह की नॉलेज नहीं थी। इतना ही पता था कि अपने को आत्मा समझ परम धाम में मुझे याद करो, इसके अलावा योग का और कुछ ज्ञान नहीं था। तो ऐसा ही पावरफुल योग जब हो गया तो बहुत आनंद हुआ, और बस वो वरदान था बाबा का। उसी समय हमारी ड्यूटी किचन में लगी तुरंत, बस ये योगी भव का वरदान मिलना और हमारा किचन में आना। हम किचन का काम नहीं जानते थे, माताओं को मदद करने के लिए हमें किचन में बुला लिया गया। और अब हमें एक योग का मार्ग मिल गया, चार्ट लिखना और उसमें बहुत सारी रिसर्च जैसी करना, बुद्धि योग कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कहाँ बुद्धि योग टूटता है, ये सब रिसर्च मैंने पहले 6 मास बहुत अच्छी की 69 में। और मुझे सब पता हो गया कि जरा भी कहीं खान पान में आसक्ति गई, योग टूटा। जरा भी किसी के अवगुण पर नजर चली गई, योग टूटा। जरा भी कहीं पर चिंतन हो गया, योग टूटा। दृष्टि इधर उधर देहधारियों की ओर गई, योग टूटा। कोई इच्छा हो गई मन में, योग टूटा। ये सब बहुत गहरी चेकिंग हो रही थी उन दिनों। तो पता चला हमें फिर, जब हम किचन में आ गए और हमारा योग अच्छा होने लगा, तो आप जानते हैं जब किसी का पुरुषार्थ अच्छा होता है एक छोटे परिवार में, चारों ओर फटाफट पता लग जाता है। तो हम पहले से ही चर्चा का विषय बन गए, जो आज तक भी बने रहते हैं। और इसमें आप जानते हैं, चर्चा का विषय जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको उल्टे सीधे अनेक अनुभव होने लगते हैं ना। कोई ईर्ष्या करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कमेंट्स करता है, वो सब हमें सुनने पड़ते हैं। तो प्रसिद्ध होने के बाद मनुष्य को ज्यादा सावधान होकर चलना पड़ता है। हमें इन चीजों का ज्ञान तब नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि अपने पुरुषार्थ को गुप्त रखना चाहिए, इसलिए हम किसी को कुछ भी बताते नहीं थे। चार्ट लिखने का बहुत रस था पहले से, और भिन्न भिन्न तरह के चार्ट मैं अपने बनाया करता था। जो कमी मुझे अपने में दिखी, वो पॉइंट मैं तुरंत चार्ट में लिखा। धारणाओं के चार्ट, नशे के चार्ट, स्वमान पर मुझे पहले से ही पकड़ हो गई थी बाबा की मुरलियों में, स्वमान के चार्ट, योग के भिन्न भिन्न तरह के चार्ट, ये सब मैंने कई कई सालों तक लिखे। तो वो बात जो मैं आपको बता रहा था, जब मैं ऐसा योग युक्त होके भोजन बनाने में मदद करने लगा, तो 15-20 दिन के बाद ही वो सभी माताएं चली गई, क्योंकि वो समर्पित नहीं थी। अब दीदी ने मेरे से पूछा कि तुम भोजन बनाओगे, तो मैंने कहा हाँ, भोजन बनाने में क्या है, जो कहेंगे, समर्पित होने में तो वायदा किया जाता है ना, जो कराओगे वो करेंगे, ठीक है। अब मैं अकेला रह गया किचन में, भोली दादी, मैं, भोली दादी की बहन है सती भोली, फिर धीरे धीरे वल्लभ भाई आ गया हमारे साथ खींच के, फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती थी हमारी लोगों से, तो कईयों वो फ्रेंड बनाया और वो किचन में आ गए। तो हम दो हुए फिर, तो किचन में संपूर्ण शांति हो गई। तो अब दीदी आती थी हमारे पास रोज, दीदी और दादी रोज कम से कम 5 बार किचन में आती थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो पीछे से बात किया करती थी, मैं सुन लेता था। ये शब्द आजकल हमारे यहाँ कम यूज होते हैं कि ये जो बालक है ना, लगता है ये बाबा का टच किया हुआ है। उन दिनों ये लैंग्वेज बहुत होती थी। तो जब से ये आया है किचन में शांति हो गई। पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो फिर 69 बीतते बीतते ही दीदी जब किचन में आती थी तो मुझे बताया कि तुम्हें एक बात बताती हूं आज, कि एक दिन किचन में माताओं की लड़ाई हो गई, तो मैं गई बाबा के पास। बाबा झोपड़ी में बैठे थे, शाम का समय था, एकांत बिल्कुल, मधुबन में कोई होता ही नहीं था, 25-30 लोग रहते होंगे बस, संपूर्ण एकांत, सन्नाटा छाया हुआ, बाबा झोपड़ी में अंगूरों की बेले, उसमें बाबा बैठे थे। तो मैं गई बाबा के पास कि बाबा माताएं किचन में लड़ाई कर रही, बहुत अशांति हो गई, आप चलो। तो माताएं बुरा ना मानना, तो वो 2-3 माताएं ऐसी थी जिनको हम उस समय लोग फ्रीडम फाइटर ही कहा करते थे, तो वो प्रसिद्ध थी लड़ाकू, और किचन में और कोई था नहीं तो वो ही काम करती थी। तो बाबा बहुत शांत और एकांत में बैठे थे ना, बिल्कुल मस्ती में थे एकदम, अंतिम समय था ना बाबा का, 68 की बात है, एकदम मस्ती में बैठे थे। बाबा को जैसे अच्छा नहीं लगा कोई आ गया। बाबा ने कहा दीदी तुम जाओ, बाबा नहीं जाएगा, और देखना बाबा इनको किचन से निकाल देगा और अपने हमजिंस को रखेगा, और देखना बच्चे बाबा का हमजिंस भोजन बनाएंगे और तुम सबको योग युक्त भोजन मिलेगा, जाओ कह दो माताओं को। तो बस, तो दीदी ने मुझे सुनाया, कई बार सुनाया फिर ये बात। तो मुझे तब पता चला कि 67 से ही मेरे मन में संसार के प्रति बहुत उपरांता और वैराग्य पैदा हो रहा था। मुझे लगता था ये पढ़ाई वढ़ाई ये सब बेकार है, हालांकि पढ़ने में मैं बहुत इंटेलिजेंट था और उसमें ही मुझे रुचि थी बहुत ज्यादा, लेकिन एकदम मेरे पैर उखड़ने लगे संसार से, जैसे मुझे कहीं मन नहीं लगता था। तब मुझे पता लगा कि मुझे बाबा खींच रहे थे, बुला रहे थे, और ये फिर मुझे मुरलियों से पता चल गया कि बाबा तुम्हारा आह्वान कर रहे थे 67 से। जब से मेरे अंदर वैराग्य की भावना बढ़ी थी तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप था, और उनके द्वारा ही मुझे ये योगी भव का वरदान प्राप्त हुआ। तो इस तरह बस मैं किचन में आ गया, और किचन में आना और योग का वरदान, और किचन में ही मेरा योग का चार्ट बहुत सुंदर हुआ। अगली जो 18 जनवरी आई, जैसे मैंने बताया, मैंने एक साल सचमुच बहुत मेहनत की, और ये बाबा का वरदान साथ काम कर रहा था। किचन में मैं अकेला ही रह गया था, वल्लभ भाई दूध संभालते थे, चाय बना देते थे, मैं भोजन और टोली और एक टाइम की चाय बनाता था। तो बिल्कुल एकांत, उस एकांत में, और फिर आबू की पहाड़ियां, यहां संपूर्ण एकांत। तो अगली 18 जनवरी तक मेरा योग का चार्ट सचमुच वैसा ही हो गया जैसा मुझे चाहिए था, लेकिन मैं तो संपूर्ण हुआ नहीं। मैं सोच रहा था मेरा भी शरीर छूटेगा बाबा की तरह, यही सोचते थे ना हम, संपूर्ण बनना माना चले जाना, पीछे ज्ञान हुआ बाकी। तो फिर पता चला कि नहीं, कुछ कमी रह गई होगी। फिर सोचा अच्छा अगली 18 जनवरी तो आने नहीं देंगे, पूरा करेंगे। फिर बहुत अच्छी मेहनत की, योग का चार्ट तो बहुत सुंदर हो ही गया था, लेकिन अगला साल जीवन के लिए बहुत सुंदर व्यतीत हुआ। उसमें बाबा जब आते थे, बहुत आते थे अव्यक्त बाबा, और छोटा हॉल जो हिस्ट्री हॉल है उसमें ही आते थे, और हम सब बिल्कुल नजदीक बैठते थे बाबा के। तो बाबा से कई कई बहुत सुंदर फीलिंग्स और प्रेरणा होती थी। मैं एक प्राइवेट बात बताऊं जो शायद ही आज तक मैंने किसी को बताई हो, तो बाबा जब आते थे ना, तो मैं संकल्प किया करता था कि यदि मैं ये हूं, मैं इशारे में बता रहा हूं, यदि मैं ये हूं तो आते ही पहली दृष्टि बाबा की मुझ पर पड़े, और वैसा ही होता था। तो बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, बहुत प्यार हो गया बाबा से, अव्यक्त बाबा से पर्सनली मिलना हमारे लिए बिल्कुल कॉमन हो गया। बहुत बार मिलना हुआ और हमें मिलने की इच्छा तो होती थी, लेकिन बाबा हमें बुला लेते थे नाम सहित। तो उसी साल मैंने दो काम किए। एक, मैंने देखा कि जो कमजोरियां मेरे अंदर हैं वो मुझे बाबा को दान करनी चाहिए। तो जब अव्यक्त बाबा आते थे और मैं संकल्प करके बैठा कि बाबा आज मुझे ये कमजोरी आपको दान करनी है, तो जैसे ही आप आओ, यदि पहली दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मैं समझूंगा आपने मेरी ये कमजोरी हर ली। और बाबा की दृष्टि पड़ती थी और मैं संकल्प से उस कमजोरी का दान करता था। 8 बार मैंने ये किया और बहुत अच्छे अनुभव हुए, प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे बिना मेहनत के वो कमजोरी छोड़ गई। ऐसे ही एक दूसरा पुरुषार्थ अच्छा हुआ, मैंने सोचा अपने जीवन को कुछ नियमों में बांध लेना चाहिए और जीवन के 10 नियम बनाए, जो मुरलियों में हमेशा आते रहते हैं, उन दिनों भी खूब आते थे। वो नियम विशेष रूप से वो थे कि बाबा की अव्यक्त होने से पहले, यानी दिसंबर 68 में धारणाओं पर बहुत अच्छी मुरलियां चली थी, उनके आधार से मैंने अपने जीवन को 10 नियमों में बांध दिया। जैसे सेवाओं में कभी ना नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, हाथ फैलाएंगे नहीं, नो डिमांड। ऐसे ही अपने बड़ों से कभी डिबेट नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, ऐसी कुछ धारणाएं अपने लिए सेट कर ली प्रतिज्ञा के रूप से। उसका जीवन में बहुत बल मिला। मेरे अपने जीवन में इसे एक संकल्प के, इस धारणा के अनुभव हजारों हुए कि सेवाओं में कभी ना नहीं करनी है। तुम्हें तबीयत खराब हो, बुखार हो, पेट दर्द हो रहा हो, और कोई विशेष सेवा हो और मुझे कहा गया हो, मैंने हाँ की, और मेरे अनेक बार के अनुभव हुए कि वो सेवा करने से वो बीमारी ठीक। ये बहुत बहुत सुंदर अनुभव हो गए। तो अव्यक्त बाबा से बहुत मिलने का मौका मिला। 2 घटनाएं सुनाता हूं। वैसे तो बाबा कभी बुला लेते थे जब हम बाबा से रूढ़िहान करते थे, क्योंकि बाबा पार्टियों से मिलते थे तो हम लोगों से नहीं मिलते थे। हम बाबा कहते थे हमसे आप नहीं मिलोगे क्या? तो जब बहुत प्यार से रूढ़िहान होती थी तो बाबा हमें स्वयं बुला लेते थे। ऐसे 3-4 बार हुआ 70 में और 71 में, जब मुरली चलाकर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मधुबन निवासियों से मिलेंगे। थोड़े ही होते थे तो बहुत अच्छी मुलाकात हमारी होती थी। एक दिन रात का समय 10 बजे होंगे और लच्छू बहन भागी हुई आई। हम ऊपर सोए हुए थे राइट हाउस में। बाबा की मुरली जल्दी पूरी हो जाती थी और बाबा कमरे में आए हुए थे अपने, तो मुझे उठाया कि तुम्हें बाबा बुला रहा है चलो। तो हम और वल्लभ भाई जैसे होते, वो नेपाली सॉल होती है ना, उसे ओढ़ के और पहुंच गए बाबा के सामने। लच्छू बहन हमें कह के वो भोग लेने चली गई। तब लच्छू बहन ही होती थी, दीदी दादी और लच्छू बहन, और कोई पावर में तब तक नहीं थे। आजकल जो है ना पावरफुल लोग, वो तब तक पावरफुल नहीं थे। तो वो हमें कह के चली गई और हम जो बाबा के रूम में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाबा अकेले बैठे हैं, वहां कोई नहीं है। और हम और वल्लभ भाई सामने पहुंच गए। आप समझ सकते हैं, कोई ना हो और भगवान सामने बैठा हो, एकदम आनंद हो गया बहुत ज्यादा। हम सब कुछ भूल गए। अब बाबा ने दृष्टि दी और पूछा, मेरे से पूछा कि तुम्हें किचन में काम करना अच्छा लगता है? ऐसे तो ये बात, ऐसी बात बाबा 1-2 बार पहले मुझे कह चुके थे, लेकिन बाबा ने कहा कि मधुबन में 2 चीजें सभी बच्चों को मिलती हैं जो बाहर नहीं मिलती, एक ब्रह्मा भोजन, एक बाप। तो कहा कि अगर प्यार से और योगयुक्त होकर ब्रह्मा भोजन बनाया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना 1000 आत्माओं को संदेश देने से। बहुत मुझे और खुशी हो गई। ऐसा तो कभी कहा नहीं था योगयुक्त भोजन बनाने से फायदा होगा, बल मिलेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, ये तो कहते हैं, पर उतना ही प्रारब्ध मिलेगी जितनी 1000 आत्माओं को संदेश देने से। ये बहुत सुंदर बात थी। फिर बाबा ने और भी कुछ कहा, फिर हमें दोनों को पूछते रहे कुछ पूछना है, तो हमारे पास कुछ था नहीं पूछने को बाबा से, तब तक कोई नहीं आ रहा था। बाबा बैठे, हम भी कहें क्या करें, अब दृष्टि भी कितनी देर तक लें। फिर असमंजस जैसी स्थिति हम दोनों की हो गई कि हम उठ नहीं सकते कि भाई चले, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। और बैठे रहे फिर बहुत देर के बाद लच्छू बहन आई भोग लेके, फिर दीदी दादी आई, हमें वहीं बैठा लिया, तो भोग खिलाया, हमने भी खिलाया भोग। हम हर साल बाबा को खिलाते रहे। बाबा का जब लास्ट आने का समय होता था तो बाबा के लिए बहुत सारी चीजें हम बनाते थे, और कम से कम 10 साल तक हम लोग, मैं, वल्लभ भाई, दीदी और दादी, बस 4 और भोली दादी, 5 लोग बाबा को भोजन खिलाते रहे हर वर्ष के एंड में, अंतिम प्रोग्राम में। दूसरी बार एक बार ऐसे ही बाबा से बहुत लंबा समय मिलने का मौका मिला, भट्टी हुई थी मधुबन वालों की, एक एक से बाबा मिले, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कागज पर लिख कर ले गया था और मैंने वहां रख दिए बाबा के साथ, और एक एक पूछा, और उन प्रश्नों को पूछने के बाद बाबा ने जो उत्तर दिए उससे मेरे अंदर आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद जिंदगी में मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रही। ऐसी बाबा की दृष्टि मिली और उत्तर ही इस तरह के दिए थे बाबा। वो प्राइवेट प्रश्न थे, बिल्कुल अपने जीवन से जुड़े हुए, तो ये मुलाकात भी बहुत अच्छी रही। इस तरह बहुत समय तक, 12 साल पहले सन 80 तक मेरा अपना जीवन, क्योंकि तब तक मैं किचन में लगभग अकेला ही काम करता था बहुत सारा, जितने भी लोग आते थे, 2-4 साथी हो गए थे तब तक, और बहुत काम करते थे और बाबा की बहुत मदद मिलती थी। अनुभव ये होता था जितना ज्यादा काम उतना ही ज्यादा योग का चार्ट। ऐसा नहीं कि काम कम हो तो योग ज्यादा हो, कर्म योग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि जितना ज्यादा सेवा होगी उतना ज्यादा अच्छा योग का चार्ट होगा। कुछ और भी बातें जीवन से जुड़ी हुई थी। 69 में ही मैंने सोचा था कि मुझे इस जीवन में एक बहुत अच्छी चीज बाबा से मिली हुई है, उसका प्रयोग कैसे होगा यहाँ किचन में, और वो है बहुत सुंदर बुद्धि। बचपन से अब हम डिवाइन इंटेलेक्ट कहते हैं, दिव्य बुद्धि, पर मुझे ये बुद्धि जैसे बचपन से ही प्राप्त थी, तो बाबा का उत्तर तुरंत मुझे प्राप्त हो गया कि वो आत्मा जो अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकने से बचाए, जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सके, वही बुद्धिमान है। जिसकी बुद्धि में बुद्धि का अहंकार ना आए, वही आत्मा बुद्धिमान है। तो मुझे एक बहुत सुंदर लाइट मिल गई कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि को स्थिर करके योग अभ्यास में बाबा से सब कुछ प्राप्त करने में ही कर लेना चाहिए। पहले से ही मेरा यह संस्कार था लौकिक पढ़ाई से कि सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना। ऐसा नहीं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हैं, हिंदी में कमजोर, जैसे कि फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बहुतों का यही हाल होता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होशियार होते हैं, डिस्टिंक्शन लेते हैं, 90% मार्क्स आते हैं, और हिंदी इंग्लिश जो लिटरेचर होते हैं उसमें 35-40 रह जाते हैं, तो टोटल परसेंटेज जो है बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन मैंने बराबर ध्यान रखा कि साइंस के सब्जेक्ट और लिटरेचर के सब्जेक्ट में पूरा का पूरा सब कुछ अच्छा हो, और वही फायदा मुझे यहाँ हुआ शुरू से कि चारों सब्जेक्ट जो अपने हैं वो शुरू से ही साथ लेकर चला जाए। इसलिए मैंने चारों सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान रखा, और अव्यक्त बाबा से कई बार मैंने ये बात पूछी होगी कि ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में फुल मार्क किस किस आधार पर मिलेंगे, मैं डायरेक्ट पूछा हुआ अव्यक्त बाबा से, और बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर मुझे इस बारे में दिए थे। तो मैंने ऐसा नियम बना दिया था कि अव्यक्त बाबा जो कुछ करने के लिए कहता है मुरली में वो मुझे तत्काल करना है। जब तक नेक्स्ट मुरली चलेगी तब तक मैं उस बात का अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर लेता था, जब दूसरी मुरली आएगी उसमें जो अभ्यास करने को कहा जाएगा वो करेंगे, तो मुझे बहुत समय तक बहुत अच्छा अनुभव रहा, जैसे बाबा प्रैक्टिकल में मुझे गाइड करता आया, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। और जब हम साथ साथ वो करते हैं जो बाबा कहते हैं, तो हम सब जानते हैं कि बाबा की बहुत ज्यादा मदद हमें प्राप्त होती है। एक और बहुत अच्छा अनुभव जिसने जीवन में एक नई लाइट दी थी, तो शायद 72 की ये बात होगी या 71 की, बाबा ने मेरे से पूछा, मेरा योग का चार्ट बहुत सुंदर हो गया था संपूर्ण जैसा, लेकिन एक चीज बिल्कुल छूट गई थी, मनन। दूसरी एक चीज भी छूट गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा योग करने से गंभीरता बहुत आ जाती है चेहरे पे और जीवन में मुस्कुराहट कम हो जाती है, होता है ना ऐसा। लगता था कि बाबा की बहुत सारी बातें सुनी हुई थी साकार बाबा के अंतिम 2 सालों की, कि बाबा किस तरह तपस्या में मगन रहते थे, उसी को हम फॉलो कर रहे थे, तो कुछ धारणाएं छूट गई, गंभीरता आ गई, अंतर्मुखता आ गई, सहनशीलता आ गई, लेकिन रमणीकता, हर्षित मुखता, हंसना बहलना ये छूट गया। छूट ही जाता है जब योग बहुत करते हैं, ज्ञान का मनन पूरा छूट गया। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि जितना योग का चार्ट है उतना ही मनन का है, तो मैंने कहा नहीं, और साथ साथ एक उत्तर भी दिया भगवान को कि आप कहते हो निरंतर मुझे याद करो तो संपूर्ण बन जाएंगे, तो मनन की क्या जरूरत है। बाबा भी सुन के सोचता होगा मेरा भी टीचर बन गया, तो बाबा ने कहा नहीं, चारों सब्जेक्ट में संपूर्णता जब तक नहीं आती तब तक संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स होंगे तो पास विद ऑनर होंगे। और बाबा ने मुझे कहा कि ज्ञान मनन भी किया करो, और ये महावाक्य भी वरदान बना। बस इतना ही कहना था बाबा का कि ज्ञान मनन भी किया करो, साथ में कहा कि मनन करने से आगे चलकर विघ्नों में ज्ञान की शक्ति का बहुत ज्यादा बल प्राप्त होगा, और जब कोई भी सेवा का चांस मिलेगा तो तुरंत अपने को सफल अनुभव करोगे। तब हमें पता था हमें क्या सेवा का चांस मिलेगा, हम क्लास वगैरह थोड़ा ही कराते थे, भाइयों को तो क्लास दी ही नहीं जाती थी, बहनें सोचती थी तो बहनों का एक अधिकार है भाइयों का नहीं, तो ये तो हमें दीदी ने शुरू कराया, दीदी का बहुत प्यार था, तो दीदी कहती थी इसको क्लास दो तो दे दी जाती थी, फिर भाइयों का भी भाग खुलता गया। तो तब से हमने मनन शुरू किया, और पहले दिन से अगले दिन से एक डायरी हमें तब मिली थी, उसमें एक टॉपिक रोज लिखना ऊपर और उसका विस्तार लिख देना। तो ऐसी आदत पड़ गई कि मनन से आत्मा को बहुत रस प्राप्त होने लगा, बहुत रस। तब पता चला कि मनन का महत्व भी, मनन से प्राप्त होने वाला आनंद भी योग के आनंद से कम नहीं है। अतीन्द्रिय सुख में दोनों आनंद यदि समान हो जाते हैं तभी अतीन्द्रिय सुख निरंतर रह सकता है। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए, मैंने रेगुलर 100 दिन तक किया होगा ये काम, और बस उसके बाद तो मनन नेचुरल हो गया, उसके बाद कुछ ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जिन धारणाओं की कमी महसूस होती थी वो फिर स्वतः ही आने लगी। 78 और 79 के 3 बार के मेरे एक ही अनुभव बहुत सुंदर हुए, और वो था मुझे बाबा से समीपता का बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। अब हम बाबा से खुल चुके थे, अव्यक्त बाबा से भी पूछते थे, और रूढ़िहाट में बहुत सुंदर अनुभव होते थे। इससे पहले एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। सोमवार का दिन मधुबन में कोई पार्टी नहीं है, और हमारे पास एक दो भाई और थे, शाम का भोजन बनाना था, 150 भाई बहने यहाँ थे। मैंने उनको कहा, योग भट्टी चल रही थी सोमवार को, कि तुम दोनों भी योग भट्टी में जाओ, भोजन मैं अकेला बना लेता हूँ। मैंने अकेला फर्स्ट क्लास योग में भोजन बनाया, भोग लगा बाबा को। मैं भोग में नहीं बैठा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश मुरली टाइप करनी होती थी, तो मैं शाम को 7 बजे से 6:30 से इंग्लिश मुरली टाइप करने के लिए चला गया। तो बाबा ने संदेश में मुझे इमर्ज किया ऊपर, और मेरे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। वो सीन लुप्त हुआ, फिर किरणों की बरसात हो रही है। और बस खत्म हो गया सीन। छोटा सा ही संदेश था, भागे भागे भाई किचन वाले मेरे पास आए, देखो आज बाबा ने ये दिखाया। यही मेरा प्रैक्टिकल अभ्यास हो रहा था उस समय कि जैसे बाबा की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं और मैं भोजन बना रहा हूं। तो योग अभ्यास का बाबा के द्वारा सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर रहा है बाबा कि तुम जो अभ्यास कर रहे हो बिल्कुल यथार्थ है। इस सबसे आत्मा को बहुत बल मिलता था। तो वो एक बहुत सुंदर अनुभव जो तीन बार मुझे हुआ कि बाबा मुझे संपूर्ण स्वरूप में ले गए और मेरे सामने वो संपूर्ण स्वरूप बिल्कुल क्लियर है आज तक, जिस तक हमें पहुंचना है। तीन बार हुआ ऐसा। मैं बाबा को हंसी में कहा करता था, भोजन हम बना रहे हैं, 6:30 बज गए हमें किचन में ही। मैं बाबा को कह रहा, बाबा मुझे नहा के जाना है आपके पास, जब तक मैं आपके पास न जाऊं आप आना नहीं, बहुत प्यार से। और फटाफट 10 मिनट में नहा के, और जैसे ही मेडिटेशन हॉल में पहुंचे, बैठे, आधा मिनट हुआ, बाबा आए। थके हुए थे बहुत, शरीर थका हुआ था, बहुत काम होता था, लकड़ियों से भोजन बनाना, लकड़ी बाहर से खुद उठा के लाना, आग जलाने में मेहनत, पतीले भी हाथ से उठाना, अब तो सब मैकेनिकल है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, साइंस आ गई है सब जगह, तब तो सब कुछ हाथ से था। बहुत थके हुए थे, बैठे जाके, कुर्सियां तो होती नहीं थी तब यज्ञ में, कुर्सी तो अब है ना, तब नहीं थी। बाबा का पहला महावाक्य शुरू हुआ कि आज बाप दादा उन बच्चों को देख रहे हैं जिनके ऊपर बेहद की छत्र छाया है। और ये सुनते ही मुझे लगने लगा कि मैं गया यहां से और ऊपर बेहद की छत्र छाया बन गई है और मैं अब जमीन पर नहीं हूं। ये बस इस आधे मिनट में ये अनुभव हो गया, ये फीलिंग। अब मुरली चल रही है, मैं लिख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ जो है वो कागज को टच तो नहीं कर रहा, फिर भी लिखा तो जा रहा है। देख भी रहा हूं बाबा आए हुए हैं, बिल्कुल मगन, और दिव्यता आ गई, थकान लोप हो गई बिल्कुल एक सेकंड में, और मुरली पूरी हुई, मैं चला गया। और मुझे चलते हुए अब अनुभव हो रहा है कि जमीन पर मैं नहीं हूं, ऊपर हूं, बिल्कुल दिव्य, बाबा की किरणें पड़ रही हैं बस। और मैंने समझ लिया कि ये बाबा के द्वारा अनुभव हो रहा है। मैं सोऊंगा नहीं, नहीं तो सोते ये खत्म हो जाएगा। और मैं बहुत देर तक जागता रहा और फिर सोया, सोते ही वो लोप हो गया। 6 घंटे चला, 6 घंटे का अनुभव बहुत जबरदस्त होता है, संपूर्ण स्वरूप में स्थित करा दिया बाबा ने। दूसरी बार वही अनुभव हुआ, 1000 भाई बहन आ गए थे, हम लोग छोटे हॉल में बैठे थे, बाबा मेडिटेशन हॉल में आए थे, बाबा हमसे दूर, हम देख नहीं रहे हैं बाबा को। मैं थका हुआ बैठा हूं दीवार से कमर लगा के, बिल्कुल थकान। बाबा आए, मुझे लगने लगा कि जैसे मेडिटेशन हॉल की ओर से एक तेज पुंज लाइट मेरी ओर चली आ रही है। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता, मैंने सोचा ऐसे देखा ये क्या, लेकिन फिर जैसे वो चली आ रही है और उसने मेरे अंदर प्रवेश कर लिया और मैं फिर से फ्रेश हो गया और डिवाइन हो गया, दिव्य संपूर्ण स्वरूप में। ये सेकंड टाइम अनुभव था, मुझे एक बार हो चुका था। फिर वैसे ही वो 6 घंटे तक चलता रहा मेरे साथ। ऐसे तीसरी बार फिर अनुभव हुआ, स्पष्ट हो गया कि तुम्हें यहां तक पहुंचना है, बिल्कुल दिव्यता। उसमें उस स्थिति का यदि मैं वर्णन करूं तो संपूर्ण परम आनंद में स्थित, जिसमें मुझे यह भी नहीं लग रहा था कि मैं कोई योग अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन यहां नहीं हूं। चेहरा जैसे दिव्य हो गया, गोल्डन हो, जैसे मुझसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हो। 3 बार 6-6 घंटे का यह अनुभव। बाबा की 68 में एक मुरली चली है, आप पढ़ सकते हैं उसको, कि सवेरे उठ के बाबा से तुम जिद कर सकते हो, भोलेनाथ से उसको राजी कर सकते हो, मना सकते हो, रिझा सकते हो। तो मैं एक दिन रात को सोचा आज मैं जिद करता हूं बाबा से। मैं बाबा की झोंपड़ी के बाहर जाके बैठ गया, योग बहुत अच्छा होता ही था, बाबा को कहा कि आज मैं ये देखना चाहता हूं कि भविष्य में मैं क्या बनूंगा, और जब तक आप मुझे नहीं दिखाओगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। आपको दिखाना ही पड़ेगा। योग भी होता रहा, रूढ़ियां भी होती रही, और 11 ही बजे होंगे, बस ज्यादा देर नहीं हुई, 10 से 11। और मैंने देखा कि मुझसे ही निकल के दिव्य स्वरूप ऊपर खड़ा हो गया मेरा, और उस पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ था। तो बहुत सुंदर अनुभव था ये। अब वो तो मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो ऊपर था ना, उसका दूसरा कोई होता तो ज्यादा अच्छा पढ़ लेता ना, मेरे यहां नंबर लिखाओ मैं कैसे पढ़ू भाई। तो इस तरह से सनेती तक मेरा जो जीवन था 12 साल का, बहुत सुंदर तपस्या में व्यतीत हुआ। पहले से ही मैंने अपने जीवन के अच्छे नियम बना लिए थे, इसलिए मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कोई लड़ने वाला आ भी जाता था मेरे पास, क्योंकि भोजन ऐसी चीज है कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग लड़ने भी आ जाते हैं, तो मैं लड़ता नहीं था। जिससे वायदा कर लिया था भगवान से लड़ेंगे नहीं, चुपचाप अपना निकल गए, सुन लिया, झुक गए। एक नियम बना लिया था जीवन का कि मुझे दूसरों को अपने अनुसार नहीं चलाना है, मुझे दूसरों के अनुसार चलना है। और बाबा की जो सरलता की बात है, इजी नेचर, सरल स्वभाव, इसने मुझे पहले से ही बहुत आकर्षित किया था, और मैंने इस पे बहुत ध्यान देकर अपने स्वभाव को पूरी तरह सरल करने का पुरुषार्थ किया था। अब 80 से 90 तक का जो साल था, 81 से ही मुझे एक दूसरी चीज अनुभव में प्रारंभ हुई, और वो थी खुदा दोस्त। मुरलीछवि 2 बाबा की उन्हीं दिनों 81 या 80 में, और मेरी दोस्ती हो गई बाबा से बहुत अच्छी, बहुत घनिष्ठ दोस्ती। और इस दोस्ती के बहुत सारे अनुभव हुए। उन्हीं दिनों से मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, गैस ट्रबल पहले हुई, फिर फ्रैक्चर हो गया पैर को, मैं ऊपर से गिरा तो कमर दर्द, और फिर बुखार बहुत ज्यादा रहने लगे। हर 2-3 मास में एक बार बुखार आता था। काम तो करते ही थे बहुत ज्यादा, लक्ष्य रखा हुआ था कि शरीर को कितनी बीमारी हो लेकिन यहाँ के ऊपर नहीं आएगी, फेस पर नहीं आएगी, नीचे नीचे रहेगी। ये योग की शक्तियों के प्रयोग, संकल्प के प्रयोग, ये तो अब हमें पता है ना, तब इन सब का ज्ञान नहीं था। तब तो ये संकल्प था बस बीमारी ऊपर नहीं नीचे नीचे। खुदा दोस्त है, इसके अनुभव तो अनगिनत हैं। बीमारियों में तो बहुत ज्यादा हुए मुझे। एक बार की बात है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि मैं से बोला भी नहीं जाता था, और दादी ने मुझे बुला के कहा कि 900 भाई बहने हैं, कल मालपुआ बनाना है भोग में। मालपुआ बनाना बहुत कठिन काम होता है, आजकल तो मैंने बताया मशीनें हैं, तब तो हाथ से आटे को पतला करके बनाना, छानना, सवेरे 2 बजे से हमें नहा धो के उठ के वो काम करना होता था, मुझे ही खुद। तो पेट में दर्द है, मैंने हाँ किया, बाबा से रूढ़िहान की कि बाबा बहुत पेट दर्द है। हमारे पास डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी, कोई दवाई तो होती नहीं थी। विश्वतन दादा हमारे डॉक्टर होते थे कि भाई बुखार हुआ ये दे देना, सिर दर्द हुआ 5-7 गोलियों का उन्हें पता था। तो हम लोग वो भी नहीं लेते थे, नशा बहुत था कि सब कुछ योग बल से ठीक करना है। बाबा कह देते थे कि डॉक्टरों से नहीं, सब कुछ योग बल से ठीक करो, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो कर्म योग से। इन चीजों का बहुत ज्यादा नशा होता था, दवाई होते हुए भी नहीं खाते थे। ऐसा यज्ञ में एक लहर ही चल रही थी, मैं बाबा से रूढ़िहान कर रहा था, बहुत दर्द है। तो मैं तब होम्योपैथी की स्टडी किया करता था, तो मेरी बुद्धि में एक दवाई का नाम टच होने लगा, आज तक मुझे याद रहता है, वो एसिड फोस। बनारसी भाई सेवा में आए हुए थे, समर्पित नहीं थे वो तब तक, मैंने उनको कहा कि जरा देखो भाई डिस्पेंसरी में एसिड फोस है। तो एक सीसी में 4 ही दाने बचे हुए थे 200 पावर के, मैंने वो जीप पे रखी और दर्द साफ, सदा के लिए साफ हो गया। तो ऐसे अनुभव बहुत बीमारियों में हुए। तो 80 से और 90 तक का जो समय था, दूसरे बहुत अनुभवों में बीता। उसी बीच में हमने 85-86 में गोल्डन जुबली मनाई यज्ञ की, और आप यदि 85-86 की अव्यक्त मुरली पढ़े, बहुत गहरी चली हुई है, बहुत गहरी, जिसमें बाबा ने उसे एक वर्ष के लिए कहा था कि इस एक वर्ष में कोई बच्चा यदि ये सब पुरुषार्थ करे, जो बाबा बता रहे थे, तो उसकी प्रारब्ध उतनी ही मिलेगी जितनी 50 वर्ष में पुरुषार्थ करने वालों को मिली है। ये महावाक्य थे, बाबा के लिखे हुए हैं। तो हमने तो बहुत बहुत सिंसियरली, बहुत लगन से वो साल भी व्यतीत किया, और ऐसे ही एक एक साल को अलग अलग नाम देते थे उन दिनों बाबा। कोई बाप समान बनने का वर्ष, कोई प्रत्यक्षता वर्ष, उस अनुसार जैसी मुरलियां चलती थी, बहुत सुंदर अभ्यास किए। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन होता था कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो मैं करता आया हूं। 90 से और आखिरी 10 साल तीसरे विशेष अनुभव में बीते, बहुत सारे योग के प्रयोग करते हुए जो आप सब क्लासेज में सुनते रहते हैं। तो बाबा से बहुत ज्यादा समीपता हो गई, और मैं कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बाबा को कुछ कहा हो और वो न हुआ हो। ये बहुत सुंदर अनुभव है, जो कुछ बाबा को कहा वही उसने किया। बाबा की मदद के बहुत सारे अनुभव रोज लिखने में, पढ़ने में, क्लास कराने में, किचन के कार्य में और सेवाओं में, और बहुत सारी जो बातें होती है शरीर की बीमारियों में, रोज होते रहे। मैं एक अनुभव तो बहुत सुना चुका हूं कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, 3 साल तक मुझे बहुत सिर दर्द रहता था। रात को रोज क्लास तब मुझे करानी होती थी, आप सबने देखा होगा, मधुबन से ये काम मुझे मिला था। रोज क्लास में कराता था नाइट की, तो रोज सिर दर्द, और विशेष रूप से तब जब मैं क्लास कराने के लिए जा रहा हूं। तो मैं बाबा को कहता था कि बाबा अब तुम सुप्रीम फ्रेंड हो मेरे, मित्र, 1 घंटे के लिए इस दर्द को ले जाओ। 1 घंटे के बाद ही आए, सोचता था कर्म भोग तो मेरा है, 1 घंटे के बाद आए तो कोई हर्जा नहीं। और रोज ऐसा होता था, मैं स्टेज पर जाकर बैठा, सिर दर्द ठीक, क्लास पूरी हुई, सिर दर्द चालू। ऐसे अनेक अनुभव। मैं बाबा को बहुत हंसा करता था शुरू में, बहुत पहले मेरे को नाभि खिसकने लगी, बहुत पेट की नाभि खिसक जाती है ना काम करने से, पिछोटी कहते हैं गुजराती में, तो बहुत खिसकने लगी। लकड़ी उठाना, पतीले उठाना, ताकत बहुत थी, बड़े बड़े पतीले ऐसे ही फेंक देते थे हम उठा के। चावल का भरा हुआ 1 मन का पतीला घुमाया और फेंका तो वहीं जाके रुकेगा दीवार के पास, तो नाभि खिसकने लगी। अभी सीजन आ गया है, उन दिनों सीजन होता था अप्रैल मई जून, पानी तब होता था। तो मैं देखता था कोई व्यक्ति आया, शुरू में मेरी नाभि ठीक की, 3 मास तक बिल्कुल ठीक रहा मैं। सीजन पूरा हो गया, फिर हो गई। मैं कहता था बाबा को तुम भी बड़े अच्छे दोस्त हो, जब जरूरत पड़ती है ठीक कर देते हो मुझे, और जब काम पूरा हो जाता है फिर वैसे का वैसा ही। तो भगवान पक्षपात नहीं करता, कर्म भोग तुम अपना खुद भोगो, बाकी मेरी मदद तुम्हें सदाई मिलती रहेगी जब जब जरूरत होगी। तो इस तरह जीवन बहुत अच्छे अनुभव में गुजरा, और लोग मुझे देख के ये सोचा करते हैं मैं क्लास कराता हूं या लिखता हूं तो तुम बहुत किताबें पढ़ते होगे बाहर की, कब पढ़ लेते हो। लेकिन मैं बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ता, मुझे बाबा ने बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत जल्दी ग्रहण हो जाती है बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा पढ़ने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैंने फिलोसॉफी और शास्त्रों की बहुत सारी बातें पढ़ी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन थोड़ा पढ़ने से ही मुझे ऐसा लगा है मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। ये पूर्व जन्मों के इमर्ज हो जाते होंगे मेमोरी और संस्कार, ऐसा मुझे लगता है। तो पढ़ा 4 पेज और लगा मुझे कि उस फील्ड का संपूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। मनोविज्ञान की मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, और लोग समझते हैं कि मैंने भी शायद मनोविज्ञान में एमए किया हुआ है, हो सकता है। कई तो कहते हैं तुमने पीएचडी की, तुम झूठ बोलते हो, सच नहीं बताते हो। मैंने कहा चलो तुम्हारे मुख में गुलाब, मुझे क्या नुकसान है, अगर तुम मानते हो कि मैंने पीएचडी की हुई है तो बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी बाबा ने ज्ञान ही ऐसा दिया है, और कुछ बुद्धि की शक्ति ऐसी दी है कि बाबा के एक महावाक्य से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो जो मेरी शुरू की इच्छा थी कि संसार की रचना के बारे में मुझे सब कुछ पता चल जाए, भाग्य क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये सब कुछ पता चल जाए, बाबा की गहरी फिलोसॉफी अव्यक्त मूल्यों में विशेष रूप से सुनने के बाद उन सब चीजों का पता चल गया, और मैं कह सकता हूं कि मेरा संबंध बाबा से इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि मेरी बाबा से बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ बातें हो जाती हैं, और हर समस्या में, हर बात में मुझे बाबा बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है। एक छोटा सा अनुभव सुना के हंसी का वो भी समाप्त कर दे अनुभव, तो बहुत याद आते रहेंगे, समय हो रहा है। तो हम नीचे से गाड़ी ला रहे थे अपनी, वो हमारी गैस वाली जो गाड़ी थी, तो नीचे ही देखा गैस खत्म हो गई 2 किलोमीटर चल के ही। मैंने दीपक को कहा चल भाई, अब उसमें पेट्रोल होता था, पेट्रोल का स्विच ऑन किया, 3-4 किलोमीटर चला होगा, पेट्रोल भी खत्म, रात हो गई थी। तो हम सोचने लगे रात वैसे हो गई, ना पेट्रोल है ना गैस है। हमने बाबा को याद किया, ये जो पॉइंट चल रही थी बाबा को यूज करो, इसके बहुत जोरदार अनुभव 5-6 सालों में हो गए। तो बाबा को याद किया कि बाबा हमें पहुंचना है, और देखो हमें यान सरोवर के गेट तक पहुंचा दो, बीच में नहीं क्योंकि रात हो गई है। मैंने उसे कहा 2 मिनट रुकने के बाद फिर से गैस का स्विच ऑन करो, ऑन किया, 5 किलोमीटर चली गई गाड़ी, ऊपर आ गई, फिर रुक गई। फिर मैंने कहा फिर से पेट्रोल का करो, का पेट्रोल तो है ही नहीं, कर दो तुम, कर दिया पेट्रोल का, फिर गाड़ी चल गई, और फिर हम जहां टैक्स दिया जाता है वहां तक आ गए, खत्म हो गया। फिर मैंने कहा फिर से गैस का चालू कर दो, और हम गेट तक पहुंच गए, और गेट पर आके गाड़ी बंद हो गई, फिर तो फिसल के ही आ गई अंदर तक। तो ऐसे चमत्कारिक अनुभव भी बहुत जगह बाबा के होते हैं। बाबा को मैं गाड़ी जब सीखी, हमारी बड़ी गाड़ी कॉन्टेसा, तो मैंने सीखी, मैं बाबा को कहता था भाई मोड़ पे कोई आ जाता है तो नए व्यक्ति को डर लगता है ना, अचानक कोई आ जाए दूसरी गाड़ी। मैं कहता था देखो एक काम करना, तुम मोड़ पे मेरे सामने कोई गाड़ी ना आए। बाबा कहता हो गए अच्छे काम मुझे देता है। तो रियली ऐसा ही होता था। मैं कहता था कि बाबा देखो मेरे से भी गाड़ी पूरी चलानी नहीं आती, मेरी जगह तुम आके चलाना। और कई बार मुझे अनुभव हुए कि बाबा चला रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव, मैं होता तो एक्सीडेंट होता, और बाबा चला रहा है। ऐसे बाबा के बहुत सारे अनुभव, समीपता के, फ्रेंडशिप के, उसकी मदद के होते रहे जीवन में। इसलिए मैं बाबा से अब रूढ़िहान करता हुआ कहता था कभी कभी अभी पीछे कि बाबा 33 साल मुझे हो रहे हैं लगभग, अब पूरे हो जाएंगे, कि भाई आपने मुझे अपने ब्रह्मा भोजन का काम दिया था, मैंने तुम्हारा काम ठीक से किया या नहीं मुझे बता दो। मुझे तो लगता है मैंने 33 साल तुम्हारे दिया हुआ कार्य ईमानदारी से किया है, पूरी तरह सिंसियरली। कुछ कमी रह गई हो तो बता दो, आने वाले समय में वो भी मैं पूरा कर दूंगा। तो ये देखा कि बाबा जहां हमारे ज्ञान योग से राजी होता है, उससे ज्यादा राजी होता है कि हम उसके यज्ञ की सेवा किस तरह करते हैं। दिल से कहें, क्या शब्द यूज करें, आप सोच लें, किस तरह हम उसके यज्ञ की सेवा करते हैं, इस बात से भगवान राजी हो जाता है हमसे, और हमें वरदान दे देता है, और तब हमारे जीवन की यात्रा बिल्कुल सहज हो जाती है।
बचपन से ही योगी बनने का स्वप्न था इस जीवन में, ये सुना था कि योग बल संसार का सबसे बड़ा बल है, कि जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से योग की शक्ति चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। तो बचपन से ही इच्छा थी कि ऐसे योग की शक्तियों का बहुत अच्छा अनुभव किया जाए। ज्ञान मिला, सबसे पहले मैं यहां पर बाबा से मिलने के लिए 68 जून में आया। उससे पहले मैंने सनातन धर्म की स्टडी की थी, और परिवार आर्य समाज से जुड़ा होने के कारण आर्य समाज का संपूर्ण अध्ययन किया था। आर्य समाज में एक विशेष बात जो यहां से भिन्नता रखती थी वो थी कि आर्य समाज में ये नहीं माना जाता कि भगवान इस सृष्टि पर अवतार भी लेते हैं। और यहाँ बताया गया था कि स्वयं परम पिता सर्वशक्तिवान बाबा के तन में अवतरित होके ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा आकर्षण था मेरे लिए। और मैं 68 में यहाँ पर आया ये सब देखने के लिए। पहले मनुष्य को देखना होता है, फिर स्वीकार करता है मनुष्य। आते ही देखा कि सचमुच बाबा की पर्सनालिटी, बाबा के नैनों में, मस्तक में तेज, उनकी वाणी में एक वंडरफुल प्रभाव जो पहले कभी नहीं देखा सुना था, वो सब अनुभव में आया। 8 दिन रहे यहाँ बाबा के पास। बाबा तो बाबा थे, बाप, और बाप की तरह ही सब बच्चों से मिलते थे। गुरु नहीं, गुरु की तरह ऑफिशियल भी नहीं, बाप की फीलिंग लेकर और ये अनुभव और विश्वास के साथ मैं यहाँ से लौट गया कि ये सत्य है कि बाबा के तन में स्वयं निराकार प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर था पहले जो ज्ञान पढ़ा था और जो बाबा के द्वारा मिला था। उस अंतर को बुद्धि के द्वारा, अनुभव के द्वारा देखने और समझने का प्रयास किया और ये निश्चय किया कि जब स्वयं भगवान इस धरा पर कार्यरत हों, जब भगवान से मिलने का, उसके समीप रहने का सुंदर अवसर हमें मिला हो, तो क्यों ना अपने जीवन को उन्हीं के साथ व्यतीत किया जाए। और इन्हीं भावनाओं के कारण 68 में ही मैं समर्पित हो गया, इस कार्य में लग गया। अब लक्ष्य थे 2-3 जीवन के, बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ में सेवा करना, योग के श्रेष्ठतम अनुभव करना। और फिलोसॉफी के फील्ड में एक विशेष बात जो बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा अपील करती थी कि ये संसार कैसे बना है, इसमें कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं, फिजिक्स के कौन से सिद्धांत, मनोविज्ञान के वाइब्रेशंस के कौन से सिद्धांत, भगवान का इसमें क्या रोल है, इस संसार को रचने में क्या उसका पार्ट है इस संसार में, ये सब जानने की बहुत तीव्र इच्छा थी। ऐसे तो भगवान को जानना और उससे मिलना ये भी इच्छा रहती थी, पर उससे भी बड़ी इच्छा इस सत्य को जानने की थी। अनुभव प्राप्त हुए। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि सत्य न तो पुस्तकों से जाना जा सकता, न केवल ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जा सकता, अनुभवों की गहराई के द्वारा ही संपूर्ण सत्य की गहराई को पहचाना जा सकता है। तो धीरे धीरे, जैसे जैसे आबू की इन पहाड़ियों में, एकांत में, इस शांत वातावरण में योग अभ्यास किया, तो सृष्टि की रचना के सारे रहस्य स्पष्ट हुए। मुझे हमारे वकील साहब ने एक विशेष बात आज कही है कि अपने अनुभव में, मैं अपना लास्ट अनुभव, जो वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, आप सबके लिए भी सुना दूं। योग के अनुभव तो पिछले 36 सालों में मैंने एक से एक सुंदर किए हैं। उसमें भी सबसे सुंदर अनुभव, हम यहाँ, मैं भगवान शब्द यूज नहीं करूंगा अपने वक्तव्य में, हम बाबा कहते हैं भगवान को, बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं और शिव बाबा को भी। तो बाबा की समीपता, भगवान की समीपता और उससे अपनापन, ये दो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस के आधार बन गए जीवन में। तो जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे आज कहा है थोड़े में, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और वो ये था कि पिछले मास मुझे फोन आया कि लौकिक घर में मेरे छोटे भाई का अपहरण कर लिया गया है। वो ऐसा एरिया है जहाँ हमारा नेटिव प्लेस है, मुजफ्फरनगर मेरठ के पास, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, जो बहुत क्रिमिनल है आजकल, क्या पिछले 10 सालों से क्राइम के क्षेत्र में उसका पहला नंबर है इंडिया में, और सुगर का भी वो पहले नंबर का केंद्र है भारत का। सबसे ज्यादा चीनी, गुड़, शक्कर ये वहीं उत्पन्न होती है। तो मुझे मैसेज आया, एक्चुअली मैसेज मिला था बॉम्बे में, जब मैं एक योग प्रोग्राम के लिए वहां गामदेव में उपस्थित था। इसका अनुभव मैं आपके सामने 10 मिनट में रखूंगा, अनुभव तो 17 दिन का है। पर उसमें योग के अभ्यास, शिव बाबा की मदद, उसके द्वारा होने वाली प्लानिंग, ये सब कैसे हुई, ये मेरे लिए भी अपने तरह का एक अनूठा अनुभव था। उससे पहले मैं ये आपको अवश्य कहूंगा कि योग के द्वारा मेरे जीवन से भय खत्म हुआ, सेंसिटिविटी खत्म हुई, क्रोध पर बहुत अच्छी तरह से विजय हुई। हम कार्य व्यवहार में रहते हैं, आपने सुना किचन का कार्य थोड़ा बड़ा तो होता ही है, हजारों लोग, कई कई हजार हमारे पास होते हैं, उस सब में तनाव से मुक्त रहकर कार्य करना और कराना, इसके बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हैं। योग के फील्ड के द्वारा यदि मैं आपको एक मिनट में कहूं तो योग से हमारे मन में शक्ति बढ़ जाती है, और जब हमारा मन शक्तिशाली होता है तो हमें एक अनुभव होता है जो मेरे रोज के अनुभव हैं और जो मैं रोज एक्सपेरिमेंट करता हूं कि हम अपने पॉजिटिव थॉट्स से सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हमारे कमजोर संकल्प परिस्थिति और विघ्नों को रचते हैं, और हमारे शक्तिशाली और पॉजिटिव संकल्प विघ्नों को समाप्त करते हैं। तो हम अपने कार्य व्यवहार की जो छोटी मोटी समस्या इनमें आती है उसको संकल्प के द्वारा हल करने का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। ये मेरे रोज के अनुभव हैं। छोटी मोटी जो बातें कार्य व्यवहार में आती हैं, मैं हमेशा इस बात में दृढ़ रहता हूं कि एक भी निगेटिव संकल्प न चले। मान लो, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, हमने भोजन बनाया कल 2000 का, और कई लोग सोचते थे कि बहुत भाई बहने बाहर से मधुबन से खाने आएंगे, खाना कम हो जाएगा आज। मैंने उन सबको कहा आप एक ही संकल्प करो कि खाना बच जाएगा, और सबने एक ही संकल्प किया और खाना बच गया। आप सोचेंगे वो तो बचना ही होगा इसलिए बच गया, लेकिन ऐसा नहीं, अनेक एक्सपीरियंस ऐसे हुए जब बात बिल्कुल निगेटिव दिखाई दे रही हो और पॉजिटिव संकल्प से वो पॉजिटिव हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये योग की शक्ति बहुत अच्छी तरह से काम करती है जीवन में। तो अब मैं उस अनुभव पर आ जाऊं, तो मुझे मैसेज मिला और मेरे सामने सबसे पहला कार्य था, क्योंकि एक बहुत सुंदर योग का शिविर गामदेवी में चल रहा था, तो मैं अपने मन पर भी, चित्त पर भी, चेहरे पर इसका जरा भी एक्सप्रेशन ना आने दूं कि मेरे साथ कुछ हुआ है, और मैंने वैसा ही किया। बाबा के द्वारा बहुत सुंदर ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। योग बल के साथ साथ ज्ञान भी एक बहुत बड़ा बल है। उसके द्वारा मैंने अपनी स्थिति को बिल्कुल अविचलित रखा, न किसी को बताया, न किसी को पता होने दिया, और जो प्रोग्राम चल रहे थे, मुझे ही वहां क्लास करानी थी, योग अभ्यास कराने थे, मैं अकेला ही था, वो सब मैंने किए। यहाँ आ गया मैं और मैंने दादी जी को बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। मैं सोचा था पूरी हो जाएगी जल्दी, लेकिन दो तीन दिन तक जब कुछ पूरा नहीं हुआ तो दादी ने मुझे कहा कि तुम्हें जाना ही चाहिए। तो मैं वहां गया तो आप जानते हैं वो एक ऐसा एरिया है जहां जाते ही हमें ये सुनने को मिला कि आज तक जिसका अपहरण हुआ है कोई वापस नहीं लौटा, सभी को वो लोग मार देते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, मार भी देते हैं। रिसेंट की एक घटना बिल्कुल ताजी ताजी थी कि एक लाला जी का अपहरण किया और उससे 45 लाख रुपए लिए और मर्डर भी कर दिया, कुछ कहा सुनी हो गई। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हम सुन रहे थे। कोई कह रहे थे कि भाई पुलिस की कार्रवाई आप बिल्कुल न कराओ, वो उसका मर्डर कर देंगे निश्चित रूप से। सबसे पहले हमने जाते ही ये काम किया कि जितने भी परिवार के लोग थे, लगभग आधा गांव इसमें बिल्कुल इस घटना से प्रभावित था, और मैंने सभी को जाते ही पहला संकल्प वही किया कि आप सभी मिलकर शिव बाबा से योग लगाते हुए ये संकल्प करें कि वो ठीक ठीक सुरक्षित वापिस लौट आएगा। कोई भी ये संकल्प न करे कि वो नहीं आएगा, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सभी निगेटिव संकल्प समाप्त करें। तो जाते ही बहुत अच्छा हो गया, सब सोए आराम से, उससे पहले सो नहीं रहे थे, सबने भोजन किया, उससे पहले भोजन नहीं कर रहे थे, सबने योग अभ्यास प्रारंभ किया। तो मैं आपको अब, जब वो वापस लौट आया, उसने जो कुछ सुनाया और जो कुछ हमने संकल्प किए थे, वो तीन थे हमारे सामने। पुलिस कार्रवाई हम बहुत करा रहे थे, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध है आजकल सारे विश्व में कि जिस ऑफिसर से मिलते थे वो SSP सबसे पहले, DIG, IG, चीफ सेक्रेटरी, UP, हम फोन ही करते थे तो वो कहते थे हाँ हमें तो बहने राखी बांधने आती हैं, हमने तो इस जगह ज्ञान सुना है, हमने तो वहां आपके सेंटर देखे हैं, तो सेवाओं के कारण जिससे भी हम मिलते थे जैसे वो हमारा हो जाता था। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चारों ओर हुआ। अब हमारे पास तीन संकल्प थे जो मैं आपको इसलिए भी सुनाना चाह रहा हूं कि आप अपने जीवन में उनको प्रयोग कर सकते हैं। योग जो एक सबसे बड़ी शक्ति है, पहला संकल्प था, एक नई चीज है सबके लिए। अपने जिन्होंने श्री कृष्ण की सीरियल देखी है कृष्णा, उन्होंने देखा होगा श्री कृष्ण के चारों ओर एक प्रभा मंडल दिखाते हैं, ओरा घूमता रहता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें कोई भी और शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो मैंने अपने सभी और भाई, हमारे बहुत लोग ज्ञान में चलते हैं, 30-35 लोग सभी थे आसपास, तो उन सबको ये कहा और सिखाया भी कि हम योग के वाइब्रेशंस भेजकर वो भाई जहां भी है उसके चारों ओर एक पावरफुल रक्षा कवच क्रिएट करेंगे, एक पावरफुल ओरा जिसको कवच कहेंगे, जिसमें यदि वो गोली मारना भी चाहें उसको तो गोली नहीं लगेगी, गोली उससे स्लिप होके बाहर चली जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशंस इतनी ही शक्तिशाली चीज होती हैं। तो हमने कई दिन तक सर्वशक्तिवान से योग लगाकर उससे वाइब्रेशंस लेकर उस अपने भाई के, उसका नाम अशोक है, चारों ओर पावरफुल ओरा रक्षा कवच के रूप में क्रिएट किया। दूसरा संकल्प था, हम ईश्वरीय महावाक्यों में सुन चुके हैं, जो महावाक्य सुनते हैं वो जानते हैं कि हम योग की शक्ति के द्वारा एक स्थान पर बैठकर दूसरों के मन को बुद्धि को बदल सकते हैं। तो वो अपहरणकर्ता चार थे, चारों के पास बंदूकें थी, तो हमारा एक लक्ष्य था कि हम इनके मन को बदल दें ताकि ये उससे शत्रु भाव न रखें, मित्र भाव रख लें। तो हमने योग के अभ्यास के द्वारा ये काम भी कई बार किया कि उनके मन बदल जाए, उनको कुछ संकल्प भेजे, कुछ थॉट्स भेजे ताकि वो उनको रिसीव कर लें। तीसरा काम हमारे पास था, हमें ये था कि वो लौट तो आएगा ही, पर जब वो लौटे कैसा हो, वो उसकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ी हुई हो, उसके शरीर का उसने बहुत खराब हाल कर दिया हो, तो आगे का जीवन उसका बहुत खराब होगा। तो हम तीसरा संकल्प ये रखे हुए थे कि हम उसको ऐसे वाइब्रेशंस भेजें कि उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहे, न तो वो घबराए, न साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस हो, न उसके मन में और कोई निगेटिव फीलिंग्स हो कि मेरा क्या होगा, कब मैं यहां से जाऊंगा, वो बिल्कुल शिव बाबा से योग युक्त होकर वहां रहे। तो जब वो लौटा, जन्माष्टमी के दिन वो वापिस लौट गया था, तो आते ही हम सब तो हैरान हो गए, वो अचानक लौटा और उसने दोनों हाथ उठाए, गांव के बहुत सारे लोग उसको लेकर आ रहे थे 250 कम से कम, तो उसने आते ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी कोई चिंता नहीं करना, और अपना ये अनुभव सुनाया कि 2-3 दिन के बाद वो मेरे से बिल्कुल फ्रेंडली हो गए थे। उन्होंने न मेरे हाथ बांधे न आंखें बांधी, और जो उनका हेड था उसने मुझे 3-4 दिन के बाद ही कह दिया था कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पैसे के लिए हम तुम्हारा मर्डर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और इतने वो फ्रेंडली हुए कि उनमें से एक जो था सबसे छोटा, उसने इसे कह दिया था कि मान लो इन्होंने कभी तुम्हें मारने का प्लान बनाया भी तो मैं तुम्हें चुपचाप बता के निकाल दूंगा। तो इतना अच्छा फ्रेंडली व्यवहार उसने बताया, न पट्टी बांधी न हाथ बांधे, खुला रखा, नहाने धोने की छुट्टी दी, पेट खराब हुआ दवाई लाए, कहा मैं अमरूद खाऊंगा, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, अमरूद लाके दिए, फिर कहा मैं तो खीरा खाऊंगा, खीरा लाके दिया। उसने कहा कि देखो भाई, मैं तो केवल पवित्र आत्माओं के हाथ का ही भोजन खाता हूं, अगर आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये शिव बाबा की एक बहुत बड़ी, क्या कहें, मेहरबानी या चमत्कार कि उन अपहरणकर्ताओं ने 17 दिन में से 12 दिन तक उसे कन्याओं के हाथ का भोजन लाके दिया और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से उसको रखा। और 12 तारीख से 4 दिन पहले से मैं सबको कह रहा था कि भाई मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको मुक्त करने की प्लानिंग बाबा कर रहा है, क्योंकि हम पुलिस से बहुत समीप थे और हम ये महसूस कर चुके थे कि पुलिस के बस का कुछ नहीं है, पुलिस डरती है और पुलिस को कई सारे प्रेशर होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर और कई ऑफिसर्स के प्रेशर, तो हमने ये देख लिया था कि पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा फील हो रहा था। हम अपने ईश्वरीय ज्ञान में सुनते हैं और बहुत सारे अनुभव हम सब बाबा के बच्चों ने इस बारे में किए हैं कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। तो हमने दे दिया था कि वो आपका बच्चा है, उसको छुड़ाना आपका काम है। तो ऐसा लग रहा था कि उसको छुड़ाने की प्लानिंग स्वयं से बाबा कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जिस तरह वो छूट के घर आया, वास्तव में किसी और की प्लानिंग नहीं, स्वयं शिव बाबा की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी एक मिनट में बताऊं? तो वो ले चलते बहुत दूर उसे एक ऐसे गांव में ले गए, ट्यूबवेल पर वो रखते थे। ट्यूबवेल आप जानते होंगे, खेतों में पानी दिया जाता है ट्यूबवेल्स बोरिंग के। तो उस वो ट्यूबवेल एक उस लड़के की थी जो हमारे गांव की थी। वो अचानक शाम को कपड़े धोने ट्यूबवेल पर आ गई। उसने इसको पहचान लिया, कहा तुम इनके साथ कैसे? वो कुछ बता तो नहीं सकता था। उसने समझ लिया, वो घर लौटी और उनके घर वाले बहुत पावरफुल हैं, लाइसेंस की 2-3 बंदूकें हैं उनके पास। उसने घर वालों को बहुत दबाव डाला कि जब तक आप उसे नहीं छुड़ाओगे मैं भोजन नहीं करूंगी। बुखार हो गया उसको। आखिर उसके घर वाले 10 लोगों को लेकर पहुंचे और उनको कहा, भैया तो प्यार से छोड़ो बातचीत की, नहीं तो लड़ाई से, इसको हम लेकर ही जाएंगे। और उनकी मदद से वो छूट कर घर वापिस आ गया। तो ये थी ईश्वरीय प्लानिंग, कहां उनको ले जाना, किस तरह उस लड़की का वहां पहुंचना और उसके अंदर इतनी उमंग हो जाना। नहीं तो लोग पुलिस से डरते हैं और बहुत सारी चीजों का भय रहता है ऐसे केसेज में, लेकिन ये सब बाबा की प्लानिंग। तो ये अनुभव बाबा की शक्तियां, उसका योग बल और उसके प्रयोग के द्वारा हुआ। इसलिए मेरे मन से, दिल से बहुत धन्यवाद निकलता है, बहुत समीपता का अनुभव होता है कि हमारे दिल की हर आवाज शिव बाबा तक पहुंचती है। ओम शांति।